नाइजीरिया में दो धमाके, कम से कम 44 अफराद हलाक। यूनानी आवाम की जानिब से बेल आउट पैकेज मुस्तरद, वजीर खजाना मुस्ताफी। क्वेटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 हलाकतें। और चीन में तलाक में इजाफे का जिम्मेदार सोशल मीडिया। ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के वस्ती शहर जोज में हुक्काम का कहना है कि दो बम धमाकों में कम से कम 44 अफराद हलाक हुए हैं। इन हमलों का जिम्मेदार बोको हराम को ठहराया जा रहा है, ताहम अब तक इन वाकयात की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। मजीद बताएंगे जीशान हैदर।
हुक्काम के मुताबिक ये धमाके इतवार की शब एक रेस्टोरेंट और एक मस्जिद में हुए। ताहाल किसी ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम मुल्क में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम बहुत सरगर्म है। इन हलाकतों के बाद नाइजीरिया में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में मरने वालों की तादाद 200 से तजावज कर गई है। जबकि नाइजीरिया में बोको हराम की मुसल्ला बगावत में सन 2012 से लेकर 2015 तक मजमुई तौर पर तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं।
क्वेटा में तशद्दुद के दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं, जिनमें हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले दो अफराद समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में एक सरकारी तंजीम का ओहदेदार भी शामिल है। तफसील सुनिए क्वेटा से मोहम्मद काजिम की ज़बानी।
इनमें से एक वाकया जायंट रोड पर पासपोर्ट ऑफिस के करीब पेश आया। DIG क्वेटा अब्दुलरजाक चीमा ने बताया कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद लोगों पर फायरिंग की, जिसमें हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले दो अफराद के अलावा एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ। इस वाकये में दो अफराद जख्मी भी हुए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये फिरका वाराना टारगेट किलिंग का वाकया है। दूसरा वाकया जिना टाउन में पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद ने चाकुओं का वार करके एक NGO के सीनियर एहलकार अब्दुल रऊ को हलाक किया।
रेलवे के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते वजीराबाद के करीब फौजियों की खसूसी ट्रेन को पेश आने वाले हादसे की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जुमेरात तक मतवक़ो है। ख्वाजा साद रफीक आज इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में कुछ अहम नुकात बताते हुए कहा।
छनामा पुल रेलवे ऑपरेशन के लिए पूरी तरह फिट था। हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ की इतला के मुताबिक रेलवे ट्रैक की हालत भी बिल्कुल ठीक थी। पुल से काफी पहले डिरेलमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी। इसके साथ ही ट्रैक पर नट बोल्ट्स टूटे हुए, खुले हुए, फिश प्लेट्स टूटी हुई, खुली हुई पाई गई। जायजा लिया जा रहा है कि ये फिश प्लेट्स और नट बोल्ट्स के टूटने की वजह और खुलने की वजह सिर्फ डिरेलमेंट है या किसी ने जानबूझकर भी ऐसा किया।
कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने आज एक इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस माह के आखिर तक हिंदुओं की शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी अपनी असम्बलीज में करारदाद मंजूर करने का वादा किया है। इस बिल को कौमी असम्बली में मुतारिफ करवाने वाले MNA और मुस्लिम लीग नून के रुकन डॉक्टर रमेश वांकवानी ने BBC से बात करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट का बुनियादी मसला बताया।
जो मेन इशू जो है हिंदू मैरिज बिल का, वो ये है कि जो हिंदू मैरिजेज हैं उसको एक लीगल प्रोसीजर में लाया जाए कि वो अपने धर्म के हिसाब से उनकी मैरिजेज हो और ऑफकोर्स कन्वर्जन को रोका जाए और उनकी लीगलिटी हो कि एक अथॉरिटी हो जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन हो।
यूनान के अवाम ने मुल्क में गुज़श्ता रोज़ होने वाले रेफरेंडम में बेल आउट पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। यूनान के वज़ीर आज़म एलेक्सिस तसिप्रास ने इसे एक बहादुराना फैसला करार दिया है, लेकिन यूनान के वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी जानब यूनान की अवाम के बेल आउट पैकेज को मुस्तरद किए जाने के बाद जर्मनी और फ्रांस ने आइंदा बातचीत की जिम्मेदारी यूनान पर आयद की है। सबा नाज।
जर्मनी के एक सरकारी तर्जुमान ने बेल आउट पैकेज पर यूनान के अवाम के फैसले के बाद कहा है कि एथेंस के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी दरवाजे खुले हैं, तहम नई बातचीत शुरू करने के लिए शराइत फिलहाल पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यूनान यूरोज़ोन का हिस्सा अब भी है और ये यूनान पर मुनहसर है कि वो अब इसका हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। फ्रांस ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत की बुनियाद अब भी कायम है, तहम फ्रांस के वजीर खजाना ने वाजे किया है कि ये बताना यूनान की जिम्मेदारी है कि वो इस बातचीत के लिए कितना संजीदा है।
चीन में नए आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क में तलाक की शरह में इजाफा देखने में आया है और हुक्काम कह रहे हैं कि कई दहाइयों बाद ये तब्दीली नजर आ रही है, मगर इसकी वजह क्या हो सकती है, सुनिए मासूमा मलिक से।
चीन से मिलने वाली इतलात के मुताबिक मुल्क में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल चीन में तलाक की बढ़ती हुई शरह की एक बड़ी वजह हो सकता है। इन इतलात में कहा गया है कि चीन में शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से बराह रास्त बात करने की बजाय ऑनलाइन चैटिंग पर घंटों सर्फ करते हैं। इसके अलावा मुल्क में तलाक का इंतहाई सादा तरीका कार और नाम नहाद जाली तलाकें भी शरह में इजाफे का बायस हैं, जिनमें जोड़े स्कूल में दाखिले या दोबारा शादी के लिए बाज़ाब्ता कवायद को पूरा करने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
ये BBC उर्दू सर्विस है। मिस्र में सहाफियों ने खबरदार किया है कि इंसदाद दहशत गर्दी पर आने वाला एक नया कानून मुल्क में आज़ादी इजहार राय को मजीद मुश्किल बना देगा। इस कानून के तहत सहाफियों से कहा गया है कि वो मिस्र में जंगजुओं के खिलाफ जारी लड़ाई के बारे में कोई ऐसी खबर रिपोर्ट नहीं कर सकते जो सरकारी बयानात से मुख्तलिफ हो। कोई भी शख्स जो इस किस्म के वाकयात में हलाकतों की तादाद हुकूमती आदाद व शुमार से मुख्तलिफ बताएगा उसे 2 साल कैद की सजा हो सकती है। कानून का ये मुसवदा मुश्तबा शिदत पसंदों के खिलाफ जारी अदालती कार्रवाइयों को तेज करने में भी मदद देगा। गुज़श्ता हफ्ते सिनाई में शिदत पसंदों के एक बड़े हमले के बाद इस कानून को मिस्र की काबीना ने मंजूर किया था। इराक में हुकाम ने बताया है कि एक जंगी जहाज ने हादसाती तौर पर बगदाद में एक रिहायशी इलाके पर बम गिराया है जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। इराक के सरकारी तर्जुमान के मुताबिक रूसी साख्त के इस जंगी जहाज में कुछ तकनीकी मसला था जो इसकी अड्डे पर वापसी के दौरान इस बम के गिरने की वजह बना। कीनिया की दारुलहकूमत नैरोबी में ईसाइयों के एक गिरोह और एक मेंबर पार्लियामान ने हम जिन्स परस्ती के खिलाफ एक मुजाहरा किया है। इस मुजाहरे में शरीक अफराद ने अमेरिका के सदर बराक ओबामा के खिलाफ नारेबाजी की। सदर ओबामा जल्द ही कीनिया का दौरा करने वाले हैं जहां तवक्को है कि वो हम जिन्स परस्तों के हकूक के हवाले से खसूसी बातचीत करेंगे। उनका ये दौरा इस महीने के आखिर में मतवक्को है। कीनिया में हम जिन्स परस्ती एक गैर कानूनी फेल है। और अब खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शकूर।
पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ पालीकले में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 377 रन का हदफ मिला है और उसने चौथे दिन अपनी दूसरी इनिंग्स में 230 रन बनाए थे और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। शान मसूद और यूनुस खान ने सेंचुरियां स्कोर की। शान मसूद 114 और यूनुस खान 101 रन बनाकर नॉट आउट हैं। शान मसूद की ये पहली और यूनुस खान की 30वीं टेस्ट सेंचुरी है। अहमद शहजाद 0 और अजहर अली 5 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को टेस्ट मैच और सीरीज जीतने के लिए मजीद 147 रन दरकार हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम दूसरी इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने 5वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, वो 122 रन बनाकर आउट हुए। दिनेश चंदीमल ने निस सेंचुरी बनाई। इमरान खान ने अपने करियर में पहली मर्तबा इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। विकेटकीपर सरफराज अहमद ने उनकी बॉलिंग पर 4 कैचेस लिए। यासिर शाह और राहत अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इस सीरीज में यासिर शाह ने शानदार बॉलिंग करते हुए 24 विकेटें हासिल की। अमरीका ने खवातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में उसने दिफाई चैंपियन जापान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी जिसमें कार्ली लॉयड की हैट्रिक शामिल थी। अमेरिका ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है जो एक रिकॉर्ड है। 4 साल पहले भी फाइनल इन्हीं 2 के दरमियान खेला गया था जिसमें जापान ने पेनल्टीज पर कामयाबी हासिल की थी। विंबलडन में आज 4थे राउंड के मैचेस खेले जा रहे हैं। एंडी मरे का मुकाबला क्रोएशिया के इवो कार्लोविच से है। कार्लोविच ने 3रे राउंड में जो विल्फ्रेड सोंगा को शिकस्त दी। आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच जनूबी अफ्रीका के एंडरसन के मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी हॉकी टीम के हेड कोच शहनाज शेख ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुतला कर दिया है कि वो हेड कोच के ओहदे पर मजीद काम करना नहीं चाहते। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी हॉकी टीम अपनी तारीख में पहली मर्तबा ओलंपिक्स में शिरकत से महरूम हुई है।
और पाकिस्तान भर में आइंदा 24 घंटों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी ये हमें बताएंगे महकमा मौसमियात के डॉक्टर मोहम्मद हनीफ।
आज रात और कल दिन के वक्त मुल्क के दीगर बलाई इलाकों यानी कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, हाफजाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, शेखपुरा, कसूर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश होगी जबकि कल किसी वक्त सरगोधा, फैसलाबाद डिवीजन के कुछ इलाकों में भी तेज हवाओं या आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। इस बारिश के बाद मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी होगी जबकि शुमाली इलाका जात जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क होगा।
BBC उर्दू सर्विस का वीडियो प्रोग्राम सैरबीन देखना मत भूलिएगा आज शाम 7:30 बजे लाइव हमारी वेबसाइट पर जिसका पता है bbcurdu.com। ये BBC उर्दू सर्विस है।